शांति। आज 24 सितंबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं और वो लिंक सवेरे के लिए, शाम के लिए, सभी समय के लिए, रोजाना एक ही लिंक है। लिंक यदि आपसे नहीं खुल रहा, नहीं मिल रहा, तो आप सामने वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप लिंक मंगा सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे सर्व का कल्याण हो सकता है, वो भी आप भेज करके हम सबको सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि हम उसी को मुरली मंथन में प्रयोग करेंगे ताकि सभी उसका लाभ उठा सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे, जितना समय बाप की याद में रहेंगे, उतना समय कमाई ही कमाई है, उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। ये कैसे होगा? हम बाप के समीप कैसे आते जाएंगे? तो बाप के समीप, बाप के पास कैसे जाएंगे हम? कौन समझाएगा मुझे हम बाप के समीप कैसे जाएंगे? हाँ जी, हम याद करेंगे तो वो हमें याद करेंगे, पर तो हम बाप के समीप तो नहीं गए ना। बाप के समीप कैसे जाएंगे? बाबा परम धाम में बैठ, हाँ जी, अच्छा बाप को, बाप समान बनेंगे तो बाप के समीप चले जाएंगे, ऐसे होता है? हमेशा दोस्ती बराबर वालों के साथ होती है, साथी बराबर वाले ही बनते हैं। जैसे कोई कर्नल है तो उसको कर्नल ही अच्छे लगेंगे, मेजर है तो उसको मेजर ही अच्छे लगेंगे, सिपाही है तो उसको सिपाही ही अच्छे लगेंगे। बराबर वाले आपस में बराबर बैठ सकते हैं, छोटे बड़े तो साथ में बैठ नहीं सकते ना। जितना हम अपने आप को परमात्म डायरेक्शन पर सुधारते जाएंगे, सुधरते जाएंगे, हमने जीरो से अप होना शुरू करना है, क्योंकि सभी बॉटम पर आकर ही बाबा से पढ़ना शुरू करते हैं। और जब 1%, 2%, 5%, 10%, 30%, 50%, 60% जितना हम अपना करैक्टर टॉप पर बनाते जाएंगे, उतना हम बाप के समीप पहुंचते जाएंगे। जब 100% कृष्ण बन जाता है, तब वो बाप समान, भगवान या परमात्मा समान बन जाता है। तभी परमात्मा कहते उसे भगवान कहेंगे, परंतु जैसे ही अगले पल उसने गिरना शुरू कर देना है, फिर हम उसे भगवान भगवती नहीं कहेंगे। तो भगवान के समान बनना, जितना हम पवित्र बनते जाएंगे, उतना परमात्मा के समीप होते जाएंगे। ये हमें बात समझ में आई, याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे, जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना ही बाप के समीप आते जाएंगे। आपने एक कहना माना, आपने 10 कहने माने, आपने 50 कहने माने, आपने 100% कहने माने, अब बाप समान होगा। प्रश्न, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात की लज्जा आती है, किस बात की उनको शर्म आती है? जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चल नहीं सकते, याद में रह नहीं सकते, उन्हें कौन सी शर्म आएगी, उन्हें कौन सी शर्म आएगी? शर्म तो नहीं आएगी ना,
जब उसे ज्ञान ही नहीं बाबा के बारे में, तो शर्म
करेगी? नहीं, बाबा के बारे में ज्ञान तो है ना भाई। जो बच्चे याद में नहीं रह सकते, याद में रह नहीं सकते, जानते तो हैं, बच्चे तो हैं, आते तो हैं, मुरली तो सुनते हैं, जब मुरली सुनते हैं आते हैं, पर तो फिर भी याद में नहीं रह सकते, तो उन्हें किस बात में शर्म आएगी? हम कल्प कल्प
हम प्रजा में आएंगे, दास दासी
बनेंगे। तो भविष्य में किसको पता होगा कि मैं वहां जाकर नौकर बनूंगा, चाकर बनूंगा? अब किस, अब बताओ, अब उसे किस में शर्म आएगी? आप तो भविष्य की बात कर रहे
हैं।
उसको बाप के साथ बात करने में शर्म आएगी। अब बाप से बात नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? समान नहीं बन पाएगा। परंतु आज बाबा कैसे कहते हैं, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। बाबा को कैसे बताएं, बाबा आज मैंने तुम्हें इतना समय याद किया। वो चार्ट लिखने समय क्या करे? समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? फिर वो चार्ट में क्या करते हैं, झूठ लिख देते हैं। बाबा 4 घंटे याद किया, आज 4.25 घंटे याद किया, आज 4.5 घंटे याद किया। नहीं तो मैंने देखा, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे चार्ट का बड़ा शौक होता था, चार्ट प्रिंट करके सबको देते थे, और फिर देखता क्या था कि बस आंख बंद करके जितना लिख दिया वो सारे महीने में 30 दिन के अंदर लिख दिया, इतना समय याद किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये सारे यस यस यस, जहाँ यस यस करना है, नो नो करना है, बस रटा रटाया सीधा लिख देना है। तो चार्ट तो भाई जी ने देखना है, वो क्या करेगा? बहन जी देखेगी तो क्या करेगी? बाबा तो चार्ट देखता ही नहीं है। ठीक है, यही तो समझते, तभी तो लिख देते हैं कि इतने घंटे याद किया। चाहे वो बाबा रूम में उतनी देर तक बैठे रहे हों, परंतु याद में क्या बाबा रूम में बैठ करके भी याद बाबा को किया, या सिर्फ बाबा की के लिए मैं बैठा? ये सारी बातों में अंतर है। तो अपना चार्ट एक्यूरेट नहीं लिख सकते। वो सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे, इसमें ही कल्याण है। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो, इसमें शर्म मत करो। चार्ट लिखने से तो पता लगेगा, हम अपने आप को जांच सकने। चार्ट लिखने का मतलब है अपने आप को जांचना कि मेरे में अभी तक क्या क्या कमियां रह गई हैं, कितनी कमियों को मैंने पार कर लिया है, तो खुशी मिलेगी और आगे की कमियों पर सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह के पंख लग जाएंगे। क्योंकि उमंग उत्साह के पंख बिना खाली ज्ञान लेने से नहीं लगते, ज्ञान से उमंग आता है और उस उमंग का उत्साह तब बढ़ता है जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और सफलता मिलती है तो आगे बढ़ता है। जान लिया उससे थोड़ी खुशी मिली, परंतु जान करके हमने उसको अपने जीवन में प्रयोग कर दिया तो उसकी खुशी बढ़ जाती है, वो हमारा अनुभव बन जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते, क्योंकि बाबा के आने से 15 मिनट पहले आकर बैठते हैं। कई सेंटर्स पर 5 मिनट पहले गीत शुरू कर देते हैं, कई सेंटर पर बहुत पहले से गीत चला देते हैं ताकि तुम आकर के बाबा की याद में बैठो। यहाँ बाप की याद में बैठते हो, अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, अब बाबा के घर में आ गए, अब हम बाबा की याद में बैठेंगे और तो कोई काम हमारे पास है ही नहीं। ठीक है सर, बाप की याद में ही आकर बैठते हो, भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है ही नहीं, भक्ति मार्ग में बाप का तो परिचय है ही नहीं, वहां तो जो पत्थर की मूर्तियां रखी हैं उनको भगवान समझकर उनके आरती पूजा पाठ करते रहते हैं, उनको नहलाते रहते हैं, धुलाते रहते हैं, उनपे फूल चढ़ाते रहते हैं, कामों में बिजी रहते हैं, परंतु हम वहाँ उन्होंने क्या कहा हमारे जीवन को सुधारने के लिए वो हम जानते नहीं, सुनते नहीं।
ज्ञान कहाँ से आया?
हाँ जी,
मूर्ति रखने का ज्ञान कहाँ से आया? पत्थर की मूर्ति बनवाया, किस नाम से बनवाया, उसके बारे में पता था, मूर्ति बनवाई भाई, इसकी वजह से
आप किसी एक को ले लो, आप किसी एक, क्योंकि सारे का एग्जाम्पल तो सबके साथ हो जाएगा ना, उसकी एक की मूर्ति बनी तो क्यों बनी? अब शुरू शुरू में तो कोई मूर्तियां थी नहीं, शुरू शुरू में जो पहला पहला मंदिर बना तो उसमें शिवलिंग रखा, शिवलिंग क्यों रखा? क्योंकि परमात्मा ज्योति है और हीरा एक ऐसा साधन है जिससे प्रकाश रहता है, तो उसको रख दिया। अब तब की कहानियां तो थी नहीं, आज से
पत्थर को शिवलिंग के इस्तेमाल,
हाँ बता रहा हूँ आपको, उसी का बता रहा हूँ, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने हीरा रख दिया, कहा कि भाई ये भगवान का यादगार है, क्योंकि उसको ज्योति के लिए कोई साधन तो चाहिए ना, कहीं से तो ज्योति निकलेगी ना, अब ज्योति समझाने के लिए उसने हीरा रख दिया। अब वो हीरा भी मोहम्मद गजनवी जो है ना लूट कर ले गया, अब क्या करे? दूसरी बात, वो राजा था उसने हीरा रख दिया, हम क्या रखे? अब हमारे पास कोई इलाज नहीं था, अब हीरे तो सारे नहीं रख सकते थे, अब हीरे की जगह पर नकल करने में तो एक्सपर्ट है, हमने पहले पहले बहुत सुंदर सफेद पत्थर कोई ढूंढ के गोल गोल कटवा के उसको रख दिया, अब कुछ कर नहीं सकते। अब उसके बाद गोल पत्थर काले मिलने लग गए तो हमने उनको रखना शुरू कर दिया, फिर हमने कहा भी सही, मानो तो भगवान है नहीं तो पत्थर है, अब हमने उसको मान लिया, अब माना तो उसको जाता है जो होता नहीं, जो होता है तो उसे माना नहीं जाता, इस प्रकार से हमने उसे भगवान मानकर रखना शुरू कर दिया, अब मान लिया कि ये भगवान है, मान लिया तो हमने आपको समझाया है कि आपके पिताजी का क्या उम्र का कोई आपके पास बैठा हो, हम उसको आपको कहे कि मान लो आपके पिताजी है, आप कहोगे ठीक है मान लिया, और तो आपके पिताजी बैठे हैं उसको कहो कि मान लो आपके पिताजी है तो आप मानेंगे? क्योंकि मेरे पिताजी हैं भी, इसको मानू क्यों? क्योंकि माना उसको जाता है जो होता नहीं है, तो ये हमारे से हमने मान लिया, यही आज तक सुनते हैं। अब उसके बाद लिखी गई गोपोर कहानियां, अब गोपोर कहानियां लिखी गई तो पढ़ाई भी वही जाती थी गुरुकुल में, अब गुरु जी से सीख करके रामायण की कहानी आया है, अब वो आकर के गांव में क्या सुनाएगा? रामायण ही सुनाएगा, अब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है इंग्लिश की पोइम सुन करके आता है, रट कर आता है, आकर के वही सुनाता है। अब वो सुनाते सुनाते सबके दिमाग में बैठ गया कि वो भगवान है। अब भगवान है तो उसकी भगवान की मूर्ति रख, पहले तो सिर्फ मूर्तियां नहीं होती, पहले तो चित्र बना के रख दिया। नहीं तो रामायण कोई भगवान, राम कोई भगवान, ठीक है राम कैसा है भाई। अब आर्टिस्ट मिल गया तो उसने चित्र बना दिया, अब और मूर्तिकार मिल गया तो उसने मूर्ति बना दी। अब जो उसको कहेंगे वो तो वही बना के देगा ना। आपने कहा कि मेरे पिताजी की मूर्ति बना दो, मैंने मंदिर में लगानी है, तो ठीक है आर्टिस्ट उसका उसकी मूर्ति बना के दे देगा। परंतु इसको तो हम जानते हैं क्योंकि आपके पिताजी हैं, परंतु राम कौन है, उसका कब आया था, क्या हुआ था, उसके बारे में सिवाय उस कहानी के जो गपोर कहानी है और कुछ भी नहीं। अब उसको हमने भगवान मान लिया तो भगवान से मांग लो भाई, भगवान दे देगा, वो हमारा पिता है, तो हमने मांगना भी शुरू कर दिया। क्योंकि ये हम ब्राह्मणों ने सारी दुनिया को गुमराह किया, कमाई का धंधा बन गया, और धीरे धीरे आज आप समझ सकते हैं कि सिवाय कमाई के धंधे के अब कुछ नहीं। एक भी ब्राह्मण से आप पूछ लो कि भगवान के बारे में क्या जानता है, कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, हाँ जी, देखिए स्टोरी लिखने के लिए आप वाल्मीकि, कालिदास, बाणभट्ट, व्यास, यही हमारे सामने पहले पहले राइटर के रूप में आए हैं, प्रमाणिक राइटर के रूप में। इससे पहले कोई पता नहीं किसने लिखा किसने नहीं लिखा, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं। उनके नाम लिखे हुए हैं, हमने उनके नाम लिख दिए हैं कि ये इसने लिखे, परंतु वही श्लोक किसी और ने भी लिख रखे अपने नाम से, किसी और ने भी लिख रखे अपने नाम से, किसी और ने भी लिख रखे अपने नाम से, क्योंकि उसने लिखने पर तो अपना नाम लिखा ना। परंतु वो श्लोक लिखे एक जैसे श्लोक है और लिखे गए हैं, इसीलिए स्वीकार किया गया कि वेद जो है वो श्रुति थे। और जो अपने चार बच्चों को बताया, चार बच्चों ने अपने 18 बच्चों को बताया, तो वो नेचुरल है उनमें से जो समझदार था, जिसको कुछ लिखने का तरीका समझ में आया, उसने भी लिख दिए, उसने भी लिख दिए, अब उनके बच्चों ने आगे लिख दिए। हर आप सोचो कि 30-40 साल बाद, 50 साल बाद पीढ़ी बदल जाती है और नए पीढ़ी ने लिख दिया, तो शुरू शुरू के अंदर आप सोचिए कि 300 साल में कितनी पीढ़ियां गुजर गई, अब उन्होंने अपने अपने रीति से जिसने लिख दिया। परंतु इन सब को संकलन करने का कार्य, इन सब को एक व्यवस्थित रूप में देने का कार्य संस्कृत भाषा का व्याकरण लिख करके पाणिनि ने आरंभ किया। अब उनसे जो पाणिनि से जो व्याकरण पढ़ के निकले उन्होंने फिर लिखना था, और कौन लिखेंगे, जिनको व्याकरण पढ़ी होगी वही तो विद्वान होंगे, वही तो लिखेंगे। अब वो लिखेंगे क्या, समाज को समझाने के लिए, जीवन के रहस्य बताने के लिए वो कहानियां ही लिखेंगे। तो ये रामायण वाल्मीकि ने पहली पहली लिख दी, इससे पहले कुछ नहीं लिखा गया राम के बारे में। वाल्मीकि से पहले राम का कहीं जिक्र नहीं मिलता, व्यास से पहले महाभारत की घटनाओं का कहीं जिक्र नहीं मिलता, कृष्ण का कहीं जिक्र नहीं मिलता। गणेश शब्द का मिलता है, गणेश शब्द मतलब के गण जमा ईश, गण जमा ईश के रूप में मिलता है। अब गणेश का इसका मतलब ये था ना कि कुछ लोगों का ईश्वर, कुछ लोगों का ईश्वर, सबका ईश्वर तो एक ही होगा ना, ये कहने कि कुछ लोगों का ईश्वर अलग होगा और सबका ईश्वर अलग होगा। ये तो नहीं होगा ना कि सबका ईश्वर अलग अलग होगा, ईश्वर तो एक ही होगा ना। अब उन्होंने एक गणेश की कल्पना कर दी कि गणेश बैठ करके महाभारत लिखता है। अब वाल्मीकि ने ये कल्पना की कि मैं सोच सकता हूं, मैं लिख नहीं सकता हूं, और गणेश को कहा कि आप लिखो, और गणेश जो है ना आ गए इस धरती के ऊपर, आकर के उन्होंने व्यास की बातें सुन करके महाभारत लिखा। अब कौन स्वीकार करेगा कि आज से 2000 साल पहले बालक गणेश ने आकर के, बड़े गणेश ने नहीं, बालक गणेश ने आकर के व्यास बोलता गया और ये महाभारत लिख दिया। अब दुनिया तो इस बात को मानकर बैठी है, हम भी मानकर बैठे थे कि महाभारत गणेश जी ने लिखा है और व्यास ने तो लिखवाया है, तो व्यास से, गणेश से तो ज्यादा समझदार व्यास हुआ, गणेश से ज्यादा समझदार तो व्यास हुआ जो इतना तेज गति से सोच करके बोल सकता है परंतु लिख नहीं सकता। दूसरे नंबर पर गणेश आया जिसने उसको उतनी तेज स्पीड से लिखा, वो तो एक मजदूरी वाला काम किया, अफसर वाला काम तो ना किया उसने। अब ये कौन समझा है किसको? हमने भी समझ रखा था गणेश भगवान है और गणेश ने महाभारत लिखा है। जब गणेश महाभारत लिख रहा है फिर वो झूठ क्यों है भाई, वो गपोड़ा क्यों है, फिर हमारे विद्वान उसे घर में रखने और पढ़ने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं भक्तों से। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है ही नहीं, भक्ति मार्ग में कोई भी नहीं जानता कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा कौन है, कैसे है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कुछ भी उसके बारे में नहीं जानते। यहां बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं मां मेकन याद करो, मुझ एक को याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूं, मैं तो सब बच्चों का बाप हूं। बाप को याद करने से ही, बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिक याद आना चाहिए कि हमें बाप से वर्षा मिलेगा, ये बात तो याद आनी चाहिए ना। छोटे बच्चे तो नहीं हो आप, छोटे बच्चे तो नहीं हो कि हम परमात्मा को याद करेंगे तो क्या मतलब मिलेगा। हम 5 मास या 2 मास के हैं परंतु तुम्हारी कर्म इंद्रियां तो बड़ी है, तुम्हें ज्ञान में आए हुए 5 महीने 2 महीने हुए होंगे परंतु तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, आप सुन सकते हो, समझ सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हारी कर्म इंद्रियां तो बड़ी हैं, तो रूहानी बाप सन जाते हैं यहां बाप और वर्षे की याद में बैठना। यहां क्या करना है, बैठ करके बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करना माना बाप का कहना माना, वर्षे को याद करना माना हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए के पुरुषार्थ में तत्पर हैं, लगे हुए हैं कि हम नर से क्या बन जाए, नारायण बन जाए, स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए, हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद में याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे, ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं, वे तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं, अपने चार्ट से खुद समझ सकते हैं। बाबा किसी का चार्ट क्या करेंगे, हर एक अपने चार से खुद समझ सकता है। बाप की याद थी या बुद्धि कहां और तरफ चली गई थी, यह एक अपने आप सोच सकता है ना। मैं बैठा तो था परंतु मैं बाबा की याद में बैठा था, हाँ ये तो खुद ही सोचेंगे ना। हाँ ये भी बुद्धि में है, अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद ठहरी ना, या बाबा वहां बैठे हो क्या, बाबा आके हम सबको पढ़ाएंगे तो भी आप बाबा की याद में बैठे हो, आपको उससे लगन लग रही है, आप इंतजार कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता लग गया है कि भगवान से अच्छा पढ़ाने वाला कोई नहीं। हम सवेरे सवेरे उठकर मुरली मंथन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि बाबा के ज्ञान को जितना हम बुद्धि में धारण करेंगे उतना हम श्रेष्ठ बनेंगे। इस लालच में हम सवेरे सवेरे उठ करके बैठते हैं। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप लग जाएगा, है ना? झूठ लिखेंगे, झूठ लिखने से तो 100 गुना पाप लग जाएगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना, इसलिए क्या लिखना है? सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और ये भी जानते हो हम नजदीक आते जाते हैं, आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। तो फिर हम कहां चले जाएंगे? बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पार बजाते, कोई तो फिर झट नई दुनिया में आकर क्या करते हैं? पाठ बजाएंगे। कोई वहां ही बैठे बैठे रहेंगे, वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं। वो है मुक्ति धाम, दुख धाम। वो है मुक्ति धाम और वो है दुख धाम। दुख सुख से न्यारे। मुक्ति धाम में कैसे रहते हैं? दुख और सुख नहीं वहां पर। मुक्ति धाम में ना दुख है और ना ही सुख है। सुख धाम में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। यदि चार्ट रखेंगे तो ज्ञान की बातें भी अच्छी तरह समझ में आएंगे। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में ना रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे? मुरली में सुना देंगे। पाप कहते हैं, इसमें लज्जा की क्या बात है? दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं वा नहीं। कल्याणकारी बात तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है। फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगड़ देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है, हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। बल देखा नहीं है, बल देखा नहीं है, परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वे बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी? पूजा किसकी? फिर परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। परमात्मा का ना तो नाम है ना रूप है, फिर किसकी पूजा कर रहे? नाम रूप से न्यारे का मतलब क्या है कि परमात्मा का नाम भी नहीं है, परमात्मा का रूप भी नहीं है। जब उसका नाम भी नहीं है, उसका रूप भी नहीं है, तो फिर आप पूजा क्यों कर रहे हो उसकी? भाई जिसकी पूजा कर रहे हो उसका तो आप नाम भी ले रहे हो, उसका रूप भी तुम्हारे सामने है। तो फिर क्या कहना चाहिए कि परमात्मा का नाम भी है, परमात्मा का रूप भी है, फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो फिर पूजा किसकी करते हो? फिर नाम रूप नहीं है तो उसका याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। नाम रूप से न्यारी जिसका अंत ना हो ऐसी कोई चीज होती नहीं। परमात्मा के बारे में तीसरे शब्द क्या बोलते हैं कि परमात्मा बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते। परंतु बाबा कहते बच्चे मैं अपना अंत तुम बच्चों को देता हूं, मैं अपना रूप भी बताता हूं, मेरा रूप भी है, मेरा नाम भी है, मेरा अंत भी है। अंत का मेरा जिस जिस हाँ जी शिव बाबा का अंत क्या है? बहुत अच्छी बात। शिव बाबा का अंत का मतलब होता है अपने सारे राज बता देना। तो मैंने अपना अंत सारा इसको पता है, मेरा मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मेरा ये सब कुछ जानता है, इससे मेरा छुपा कुछ भी नहीं है। तो उसके हम हैं सबसे प्यारे प्यारे बच्चे जिनको सब अंत पता बता दिए। अब हम उनको याद रखे ना रखे वो हमारा पार्ट है। जैसे बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी स्थूल दुनिया की सेवा नहीं कर सकता, स्थूल दुनिया का तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दे सकता, वो जो कुछ भी मिलता है तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से मिलता है। वरना सारे भगत क्या समझते हैं, नौकरी दे दो, बीमारी ठीक कर दो, मेरे को एक बेटा तो दे दो, इतनी सारी बेटियां दे दी है। तो बाबा ने कहा मांगने का मतलब क्या है, तुम मांगोगे तब दूंगा, मुझे तुम अल्पज्ञ समझते हो क्या, कोई चीज होती ही नहीं है। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है, आकाश को भी देखते हैं ना, तो वो माँ माँ नहीं होती जो बच्चे को रोने पर दूध देती है। माँ तो वो होती है कि उसे हर एक्टिविटीज का मालूम है कि कब मैंने बच्चे को दूध देना है, तब उसको भूख लगेगी, तब उसको नहलाना है धुलाना है। ये थोड़ा है कि वो रोए तो उसका काम करना है, ना रोए तो उसका काम नहीं करना। ये तो कलयुगी दुनिया वाले करेंगे, जो श्रेष्ठ चरित्र वाले होंगे, अच्छे व्यवहार कुशल माँ होगी, उसको हर बात माँ को मालूम होती है कि मुझे कब क्या कैसे करना है। तब वर्णन होता है आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे, हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती, झट उनकी याद आती है। तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर पढ़ाते भी हैं, आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। पहले नहीं जानते थे हम, भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते कि भगवान पढ़ाता भी है। वो ये जरूर कहते हैं कि आ जा रे गीता का ज्ञान फिर से सुना जा रहे, पुकारते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो आ जाएगा और गीता का ज्ञान सुनाएगा भी। ये उम्मीद तो रखते हैं कि भगवान आ जा हमें भी गीता का ज्ञान सुना दे, परंतु उन्हें ये नहीं मालूम कब आके सुनाता है, कैसे सुनाता है, ये पता आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। कृष्ण को बेअंत भी नहीं कह सकते हो, कृष्ण को नाम रूप से न्यारा भी नहीं कह सकते हो। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं माम एकम याद करो, श्री कृष्ण ऐसे भी नहीं बोल सकता कि मुझ एक को याद करो। वे तो सन्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। ये बाबा की मुरली में नहीं आता, ये अज्ञानी लोगों की किताबों में आता। नहीं मैं ऐसा सुनाऊंगा ही नहीं। मतलब जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो अपना सतयुग के लायक बनेगा, त्रेता के लायक बनेगा, द्वापर के लायक बनेगा। जब भक्ति मार्ग में आएंगे तो जो तो जिस
ऐसा है कि गुरु जिसको धारण कर रहा है
भाई जी, बाबा ने ऐसा नहीं कहते, मिक्स कर देने से गड़बड़ हो जाती है। बाबा ऐसा नहीं कहता, ये दुनिया वाली गीता में लिखा है, क्योंकि कौन सी बात किसकी है, कौन सी बात किसकी है। दुनिया वाली गीता के सातवें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है कि जो जो भक्त इच्छा से, कोई उनकी इच्छा है नहीं, इच्छा से मुझे याद करते हैं तो मैं उनकी इच्छा ना वो अलग अलग सॉरी जो जो मतलब इच्छा से भिन्न भिन्न देवी देवताओं को याद करते हैं, है ना, परंतु मैं उनकी उस देवी देवता में श्रद्धा व भक्ति को बनाए रखने के लिए इच्छित फल देता। 21वें श्लोक लिखा कि जो जिस भी देवी देवता की पूजा अर्चना भक्ति करता है, मैं उसकी इच्छा उसकी उसमें भावना बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, इच्छित फल मैं देता हूं। मैं फल देने वाला मैं अलग हूं और वो पूजा पाठ अलग अलग देवी देवताओं की करते हैं इच्छा करके, क्योंकि उनकी अपनी इच्छा है। फिर 22वें श्लोक में लिखा, परंतु ये अज्ञानी मनुष्य ये नहीं जानते कि देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाला फल नाशवान। कितना कितना वंडरफुल लाइन लिखी है, देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाला फल नाशवान। बल आप लाइन समझो ना भाई जी, ये बाबा तो नहीं कह रहा ना, ये आपकी झूठी गीता कह रही है। झूठी गीता को सच्ची गीता में मिक्स करने से बेड़ा गर्क हो जाता है, यानी तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो ये तो वो कहते हैं जो कृष्ण ने दिया, बाकी भगवान ने दिया, बाकी ये सारे रूप है भगवान के, तो इनसे हमने मांगना है। परंतु ये ध्यान इस लाइन को ध्यान नहीं देखते, परंतु ये अज्ञानी मनुष्य नहीं जानते कि देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाला फल नाशवान, क्योंकि हमने चीजें मांगी क्या, नाशवान, बेटा दे दो मर जाएगा, मकान दे दो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो संसार की चीजें मांगी, हमने मांगी ही नाशवान है, वो खत्म ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब ये गीता में बड़ा साफ लिख दिया दुनिया वाली गीता के अंदर, परंतु उसको समझे कौन और समझाए कौन, ये बात आती है। तो बाबा तो ऐसी चीजें देता ही नहीं है, बाबा को कहता मैं तो देता हूं आत्मा को अविनाशी खजाने, ज्ञान का, प्रेम का, शांति का, आनंद का, पवित्रता का, शक्ति का, मैं तो ये देता ही नहीं है जो नाश हो जाए, मैं तो देता ही अविनाशी खजाने जो कभी नाश ना हो। जन्म अष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को जलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है, आज तक ही छोटा है वो, कभी बड़ा नहीं हुआ। अब बड़ा हो गया तो फिर छोटे को क्यों झुला रहे हो, फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा भी हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ वह क्या हुआ, कहां गया, किसको भी पता नहीं। द्वारका में जाकर बैठ गया तो फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, कुछ भी ख्याल नहीं करते। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं है, कोई कभी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कह देते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है, फिर उनको स्नान कभी कराते हैं, खिलाते भी हैं, अब वो खाता तो नहीं है, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं, मूर्ति के सामने रखा फिर उठाया और खुद खा लिया। ये भी भक्ति मार्ग हुआ ना, श्री नाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वो तो खाता ही नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा करके फिर उन देवियों को जाकर पानी में डुबो देते। जेवरात या आदि उतार कर डुबोते, उनको कहेंगे गहने भी चढ़ाओ, उनको जो किस्त कपड़े सामान जो भी, मतलब डुबोने से पहले उसको उतार लेते हैं। जैसे कोई मर जाता है उसको जलाने से पहले सब कुछ, कहीं सोना चिपका पड़ा हो तो उसको उतार लेते हैं, तोड़ करके भी निकाल लेते हैं। जिसको जो हाथ में आया वे उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, समझेंगे ना कौन सी मम्मा है ब्रह्मपुत्रा भाई, ऐसी कोई मम्मा है हमारे यहाँ? अरे ब्रह्मा बाबा, ये माँ है हमारी। अच्छा, ये चक्कर। हाँ, तो ये ब्रह्मपुत्रा ये माँ है। बाकी जितनी भी नदियां हैं उनके नाम किस पर है? लेडीज पर। पर तो ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये जो है ना पुरुष पर आती है। कितना वंडरफुल है रामायण। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सकती, ये है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को आप ज्ञान है, समझते हो, सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे? वे तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे, वे तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, शेष लोगों को तो जब ख्याल में आएगा तो रुद्र की पूजा करेंगे। ब्राह्मण बुलाएंगे, रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर ट्रांसफर कर दो। बनाते हैं ढेर शालिग्राम बनाते हैं, वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ, उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पतिवार को ही रखते हैं। दीप माला पर लक्ष्मी नारायण का दिवाली पर लक्ष्मी नारायण का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करेंगे। वे है माँ लक्ष्मी, युगल है ना, महामनुष्य इन बातों को जानते नहीं, मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से आते हैं? नाम फिर माँ लक्ष्मी रख देते हैं। देवियां कब हुई, माँ लक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते, मनुष्य नहीं जानते। तुमको तो अब तो बाप को बैठकर, और बाबा कहते अब तुमको अब बाप बैठकर समझाते हैं, तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते शिव बाबा याद है, फिर भी क्या कहते शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, मूल बात है ये, मेन बात ही ये है। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसा खर्च करते हैं इनसॉल्वेंट बन पर। इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट क्या होता है, दिवाला देखो अपना सारा दिवाला निकाल बैठे, कुछ नहीं है अब हमारे पास, सब मिट्टी में मिला मिल जाता है, कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वो ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं, शिव बाबा तो खाते नहीं है, खाते तुम रख दो बल कितना भी, वो तो खाता। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, तुम ब्राह्मण बीच में कौन हो, संभाल करने वाले, ब्रह्मा को नहीं देते हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है, बाबा कहते इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं हो। कैसा है बाबा, मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए धोती कमीज लाए हैं, शिव बाबा कहता है इनको देने से तुम्हारा कुछ जमा नहीं। जमा वो होता है जो शिव बाबा को याद कर इनको देते। फिर ये तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं, बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजू, आप शिव बाबा के खजाने में दे दो, जिसके भाग्य में होगा, जिसको ड्रामा में यूज करना होगा वो यूज करेगा। ये तो लेंगे नहीं, ब्रह्मा बाबा तो लेंगे नहीं, लेते ही नहीं थे, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा, ये लेगा नहीं तुम्हारा जमा नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है। शिव बाबा ही याद पड़ेगा, तुम्हारी चीज क्यों ले गए, बेटे को देना भी रॉन्ग है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को देना भी क्या है, ब्रह्मा बाबा को रोंग, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को देना भी। बाबा ने समझाया है तुम कोई से चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी, आपने कोई चीज किसको दी, जब वो उसको यूज करेगा, पहनेगा, खाएगा, जो भी करेगा, कौन याद आएगा, उसने दिया था भाई। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी, हल्की फुल्की चीज है तो चलो याद ना आए, परंतु कोई बढ़िया चीज दिला दी है तो वो तो याद आएगी आएगी, फलाने ने ये दिया है, उनका कुछ जमा तो होता है। अब उसकी प्रशंसा इतनी बार हो गई, जो उसने किया उसको फल यही ताजा मिल गया, अब उसका जमा तो कुछ होता है तो घाटा पड़ जाता है। शिव बाबा कहते मां मेकम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं, तो बाबा को तो कपड़ों की जरूरत ही नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, ये शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे तो मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। राजाई को भी राजाई के भी हकदार हैं, बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना, तुम तो तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो, जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी, खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्म पति बनेंगे, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं जो सही जगह खर्च कर सके, बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वो देते हैं, इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं, इनडायरेक्ट इसके थ्रू दिया किसके थ्रू दिया उसमें कुछ नहीं, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि बाबा सामने है। अब तक हम इनडायरेक्ट देते राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, नाम तो भगवान का ही लेते थे। क्योंकि सम्मुख है वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी भी कहती है, ये सब इसी समय की बात है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहां तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सन्मुख हूं, मैं ही देने वाला, मैं ही देने वाला हूं। उस इसने भी, ये ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर, अपना शरीर देकर, शास्त्री बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही दे, ये भी जानते हो इस व्यक्त का ही, को ही का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। ये जो व्यक्त ब्रह्मा बैठा है इसी का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें से बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं, कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए। कौन सा ख्याल नहीं करना चाहिए? कि हम मनुष्य से लेवे, ये विचार ही तुम्हारे पास ना आए। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाता है। क्यों? इनको देने से क्या घाटा पड़ जाएगा? पता होना चाहिए ना। हाँ, तो क्या घाटा पड़ जाएगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्या घाटा पड़ेगा? क्योंकि बाबा के खजाने में तो गया नहीं, उन्होंने भी यदि बाबा के खजाने में डाल दिया तो कुछ मिल जाएगा, उन्होंने उसे अपने ऊपर खर्च कर लिया तो वही कर्जदार है। बाबा तो कर्जदार है ही नहीं, बाबा कहेगा मेरे को तो दिया नहीं, वो आपको दे देगी इसी जन्म में आकर, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो। उसने यदि पैसा अपने ऊपर खर्च कर लिया तो वो तो फिर उसने खुद लिया, बाबा ने नहीं। मतलब वो बाबा के काम में लग गया तो आपका भाग्य बना, यदि बाबा के काम में नहीं लगा तो आपका भाग्य गरीब होंगे। करके तीन चार रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। आपने गंजी की टिकट करा दी, बाबा को क्या? आपने बेंजी के लिए टिकट कराया ना, बेंजी को आप खाने पीने के लिए सामान दे आए, आप शिव बाबा के भंडारे में देते तो अपने को घाटा थोड़े ही डालना है, अपने को घाटा थोड़े ही डालना है। पूजा अक्सर देवियों की होती है क्योंकि तुम कौन हो? देवियां हो। पूजा किसकी होती है? देवियों की होती है क्योंकि तुम देवियां हो। तुम देवियां हो, देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के, बल वो भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं। इसलिए देवियों का नाम जास्ती है, देवियों की बहुत पूजा होती है, ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्ये थे, पहले है कुल पूज्ये, फिर है सेमी पूज्ये, क्योंकि दो कला कम हो जाती है। राम की डिनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वे तो लाखों वर्ष की बात कह देते, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि और वो है रावण की बुद्धि। अब यहां राम का भी जिक्र हो गया, रावण का भी जिक्र हो गया, तो भक्त लोग जो आएंगे वो दशरथ वाला राम उठा लेंगे कि त्रेता में हम राम पढ़ते आए हैं, वही राम था। वो कहेंगे कि त्रेता में राम आया था, परंतु असलियत ये है कि राम त्रेता में कोई दशरथ का बेटा ना पैदा हुआ था ना पैदा हो। वहां तो सभी नर राम होते हैं, सभी नारी लक्ष्मी होती, सीता होती है, लक्ष्मी नहीं सीता। रावण की बुद्धि तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है, जो फिरता रहता है। जो रात में है वो कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वो कहते हैं 5000 वर्ष। जो दिन में है वो कहते हैं चक्र 5000 साल का, और जो रात में है वो कहते हैं लाखों वर्षों का चक्र। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं, सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं। वहां तो वर्षा मिलता है, अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। ये हर 5000 वर्ष बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है, संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर, उनको संगम पर ले आओ, फिर समझाना शुरू करो। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है, बाप से वर्षा लेते हो तो देवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ नंबर एक, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी, ट्रस्टी बन के शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी। याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहां ना कहां भटकती जरूर है। ये चेक करना है, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल लिखना है, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। वरदान, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे हीरो पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा हो। विस्मृति की दुनिया हम भूल गए कि हम आत्मा है, और फिर स्मृति स्वरूप अपने आप को आत्म स्मृति में रखो कि मैं आत्मा हूं, तो आप हीरो पाठ बजाने वाले विशेष आत्मा हो। ये संगम युग स्मृति का युग है और कल युग है विस्मृति का युग। कैसे है भाई? आवाज नहीं आएगी तो कैसे चलेगी बात? हाँ जी, हाँ, बाबा संगम पर आकर हमें स्मृति दिलाते हैं और परम धाम से आते ही हम विस्मृत हो जाते हैं बाप को, फिर धीरे धीरे स्वयं को भी भूल जाते हैं। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। यही दिल के गीत सदा गाते रहे। यही दिल का गीत बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की श्रीमत संपूर्ण मत के अंतर्गत। क्या होता है? संपूर्ण मदद मिलेगी तब जब संपूर्ण रूप से हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। हिम्मत का कदम हम आगे बढ़ाएंगे तो बाबा की मदद भी मिलेगी। हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तो मदद मिलने वाली। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल फोन करें, फोन नहीं करें, व्हाट्सएप करें। ओम